मिस्टर मुखर्जी के गए हुए लगभग आधे घंटे हो चुके थे, लेकिन निक अभी भी बाहर नहीं आया था। प्रियल परेशान होकर इधर उधर चक्कर लगा रही थी और खुद से बात कर रही थी। प्रियल बोली, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। एक तरफ वहां फंसी बच्चियों का भविष्य है तो दूसरी तरफ मेरे खुद के बच्चे। निक और मैं नहीं समझते कि हम नील और निखिल को कैसे भी सेफ रख सकते हैं, लेकिन उन सबका क्या? प्रियल गुस्से में खुद से बात कर रही थी। निक किसी काम की वजह से बाहर आया था। प्रियल को खुद से बात करते देख वो वहीं रुककर उसकी बात सुनने लगा। प्रियल बोली, पता नहीं निक मेरी बात क्यों नहीं समझना चाहते। निक ने प्रियल के पास आकर कहा, तुम अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं करती हो ना? जब मैंने एक बार बोल दिया कि मैं कैसे भी करके उन सबको वहां से बाहर निकलवा दूंगा, फिर तुम इस जिद पर अड़ी क्यों हो? प्रियल चिल्लाते हुए बोली, क्योंकि मैंने उनकी जिंदगी जिया है, उनके हर एक छोटे बड़े दर्द को महसूस किया है जिसे शायद आप कभी नहीं समझोगे। मैं बच्चों को लेकर बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकता। प्रियल बोली, हम बच्चों को किसी के भी पास छोड़ सकते हैं, अर्जुन और सिम संभाल लेंगे, आरोही भी तो है ना? निक ने कहा, और फिर किसी दिन उन लोगों को पता चल गया कि हमारे बच्चे भी हैं और वो उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तब उन्हें बचाने वाला कौन होगा? दोनों फिर से बहस करने लगे। प्रियल बोली, ठीक है तो हम अपने बच्चों को यूएसए भेज देंगे। याद है हमने फुलवा को भी उसकी सेफ्टी के लिए वहीं पर भेजा था। नील और निखिल को जीनी और जेनिफर आंटी अच्छे से संभाल लेंगी। निक ने गुस्से में कहा, तुम क्या चाहती हो प्रियल, कि मैं अपने बच्चों के बिना रहूं? पहले ही तुमने मुझे 5 साल उनसे दूर रखा, एक बार बताया तक नहीं, उसके लिए मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा, लेकिन अब मैं तुम्हारी बिल्कुल नहीं सुनने वाला। मेरे पास तो फिर भी मेरी मॉम थी, तुम्हारे पास तो मॉम और डैड दोनों ही नहीं थे। कोई और नहीं तो कम से कम तुम तो उनका दर्द समझो कि बिना मॉम डैड के रहना कैसा होता है। थोड़े दिनों की तो बात है, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? निक और प्रियल आपस में बहस कर ही रहे थे कि उन दोनों के चिल्लाने की आवाज सुनकर दोनों बच्चे बाहर आ गए। नील और निखिल को बाहर देखकर वे दोनों चुप हो गए। निक ने धीमी आवाज में कहा, तुमसे बहस करने का कोई फायदा नहीं है प्रियल, तुम मुझे कभी नहीं समझोगी। मुझे नहीं पता कि तुम मुझसे नाराज कैसे हो गई होगी, लेकिन कभी कभी तो मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच में बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अपनी बात कहकर निक गुस्से में जाने ही लगा कि अचानक से दोनों बच्चे चिल्लाए। नील और निखिल एक साथ चिल्लाए, गुड़िया, पापा, पापा देखो ना गुड़िया को क्या हुआ। निक ने पीछे मुड़कर कहा, प्रियल, प्रियल को क्या हुआ? ओ माय गॉड, ये बेहोश कैसे हो गई? मिस्टर मुखर्जी को भी घर पर आने की जरूरत है, इसे भी बेवजह स्ट्रेस हो गया, मुझे इसे ये सब नहीं कहना चाहिए था, बेचारी कब से परेशान थी। नील ने पूछा, पापा गुड़िया को क्या हुआ? गुड़िया, गुड़िया उठो ना प्लीज, निखिल तो रोने ही लगी। निक ने प्रियल को उठाकर बेड पर लिटाया और उसका चेकअप किया। दोनों बच्चे प्रियल के पास बैठे थे। इंजेक्शन लगाने के बाद प्रियल को होश आ चुका था। निक चुपचाप उसके पास खड़ा था। नील बोला, गुड़िया क्या हो गया था आपको, आप बेहोश? प्रियल ने थके स्वर में कहा, पता नहीं, शायद खाना ना खाने की वजह से हुआ हो, या किसी की बात सुनकर भी स्ट्रेस हो सकता है ना, मैं इतनी समझदार नहीं हूं ना कि किसी को समझ सकूं। हाँ, इसे ऐसी हालत में भी टॉन्ट मारने हैं, निक ने सोचा। प्रियल बोली, तुम दोनों फिक्र मत करो, मैं ठीक हूं, डिनर टाइम हो गया है, अपने पापा के साथ जाकर खाना खा लो। निखिल ने पूछा, और आप? मुझे भूख नहीं है, प्रियल ने कहा। निक ने सोचते हुए कहा, मुझे प्रियल को ये नहीं कहना चाहिए था कि हम दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन क्या करूं, ये जिद भी कितना करती है। प्रियल वहां से उठी और अंदर जाने लगी। उसने खड़े होते हुए बोला, निक प्लीज बच्चों को देख लीजिए ना। निक ने कहा, हाँ तीनों बच्चों को, तुम चलो उठो और खाना खाओ, अपनी हेल्थ को इग्नोर करना भी ठीक नहीं है। मेरा मूड नहीं है, निक ने कहा, लेकिन मेरा है। निक प्रियल को जबरदस्ती अपनी गोद में उठाकर डाइनिंग टेबल तक लेकर गया। दोनों बच्चे भी उसके साथ में पीछे पीछे आ गए। नील बोला, पापा आपने बिल्कुल ठीक किया, गुड़िया बहुत जिद करती है। निखिल ने कहा, अब तो आपको खाना खाना ही पड़ेगा, चलिए आज मैं आपको खाना खिलाती हूँ। निक ने कहा, और मुझे भी, बाकी गुड़िया के गुस्से को कैसे हैंडल करना है वो मुझे अच्छे से आता है। प्रियल ने बड़बड़ाते हुए कहा, मेरी जिद अच्छे से दिखाई देती है, लेकिन खुद जिद पर अड़े हैं वो नहीं दिख रहा इनको। आपको ऐसा क्यों लगा कि हम दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे बीच अंडरस्टैंडिंग हो या ना हो, लेकिन मैं आपसे नाराज करती हूँ और इस सच को कोई नहीं बदल सकता। निक ने प्रियल के पास आकर धीरे से कहा, ओके आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, लेकिन जो तुम ये धीरे से बोलती हो वो कभी भी धीरे से नहीं होता। गुस्सा छोड़ो और खाना खा लो, बच्चों के सोने के बाद इस मामले पर भी बात करेंगे। प्रियल ने हामी भरी और खाना खाने लगी। डिनर के बाद निक नील और निखिल को सुला चुका था। उनके सोने के बाद निक प्रियल के साथ अपने कमरे में आया। प्रियल ने निक से पूछा, मैं बेहोश कैसे? हाँ, तुम्हारा बीपी लो हो गया था, शायद स्ट्रेस ज्यादा लेने और खाना ना खाने की वजह से। प्रियल ने कहा,
स्ट्रेस तो होगा ही ना अगर कोई रूडी आपके पास आकर ये बोले कि हमारे बीच अंडरस्टैंडिंग नहीं है। देखिए निक, सारे गिले शिकवे एक तरफ, लेकिन दूसरा सच ये है कि मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। आपकी हिम्मत कैसे हुई वो सब कहने की? निक ने कान पकड़े और कहा, आई एम सो सॉरी गुड़िया, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तुम तो जानती हो ना कि कई बार गुस्से में मेरा खुद पर कंट्रोल नहीं रहता और मैं कुछ भी बोल देता हूँ। आई डिडंट मीन दैट, लेकिन तुम भी आजकल बहुत जिद करने लगी हो। प्रियल बोली, शादी के वक्त आपने वादा किया था कि आप मुझे अपनी गुड़िया की तरह रखेंगे और मेरी हर एक चीज को पूरा करेंगे। निक ने प्रियल को गले लगाकर कहा, अच्छा तो अभी तक तुम्हारे सारे वादे याद हैं, अच्छा बताओ क्या चाहिए मेरी जान को? प्रियल बोली, प्लीज आप इस मिशन में इन्वॉल्व हो जाइए ना, मतलब तुम अपनी जिद नहीं छोड़ोगी? चलो ठीक है, लेकिन मेरी भी एक कंडीशन है, अगर तुम वो मंजूर होगी तो मैं वही करूंगा जो तुम कहोगी। और वो क्या? निक ने कहा, इस मिशन में हम दोनों में से एक ही इन्वॉल्व होगा। आई प्रॉमिस मैं अपना 100% दूंगा और जहां तुम्हारी जरूरत पड़ेगी वहां तुमसे जरूर हेल्प लूंगा। गुड़िया मुझे तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही तो तुम इन सबसे दूर रहोगी और मैं भी जितना हो सकेगा सब कुछ घर से ही हैंडल करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे अब तुम्हारे और अपने बच्चों के बना नहीं रहना है। बोलो मंजूर है? प्रियल ने कुछ देर सोचा और कहा, ओके थैंक यू, आई मीन आई लव यू, सॉरी भी, हाँ सच में कई बार मैं बेवजह की जिद करती हूँ। निक ने हंसते हुए कहा, लगता है आज कोई स्पेशल डे है तभी तुम्हारे मुंह से थैंक यू सॉरी आई लव यू सब एक साथ निकल रहे हैं। आज कोई स्पेशल डे नहीं भी है तो क्या हुआ, मैं बना देता हूँ। निक प्रियल को अपने बिल्कुल करीब ले आया। प्रियल खुद को उसके बाहों से छुड़ाकर दूर जाने लगी तो वो दौड़कर उसके पीछे गया और पकड़कर उसे गोद में उठाकर बेड पर लेकर गया। प्रियल बोली, मत भूलिए कि हमारे दो बच्चे हैं। निक ने कहा, और दोनों ही सो चुके हैं, मैंने तुम्हारी बात मानी है तो अब तुम भी एक अच्छी पत्नी का फर्ज निभाना चाहिए मिसेस शर्मा। प्रियल ने मुस्कुराते हुए खुद को निक की बाहों में छुपा लिया। दोनों एक दूसरे के प्यार में खो गए। अगली सुबह दोनों बच्चों को स्कूल भेजकर प्रियल ने मिस्टर मुखर्जी को घर पर बुलाया था कि वो निक का डिसीजन बता सकें। मिस्टर मुखर्जी वहां पहुंच चुके थे।
मिस्टर मुखर्जी ने बैठते हुए कहा, आई विश कि मुझे गुड न्यूज सुनने को ही मिले। निक ने कहा, आप इतने दिनों में प्रियल को थोड़ा तो जान ही गए होंगे कि एक बार ये कुछ करने की ठान लेती है तो फिर वो करती ही दम देती है। इसे अच्छे से पता है कि मुझसे अपनी बात कैसे मनवानी है। प्रियल बोली, हाँ तो क्या हुआ, कुछ अच्छा करने के लिए थोड़ा बहुत जिद चलता है। मिस्टर मुखर्जी ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका मतलब आपकी हाँ है। अब आपने हाँ बोल ही दी है तो मैं भी कोशिश करूंगा कि इस बार आपकी लीडरशिप का फायदा उठाया जाए, ना कि आपको खुद मैदान में उतारा जाए। हमारी एक टीम मेरठ पहुंच चुकी है जिसकी लीडरशिप आपकी टीम की तरफ से एम्मा कर रही है। जैन और आलिया भी वहीं पर हैं, बाकी निक सर तो यहाँ से सब कुछ संभाल ही लेंगे। तो मिसेस शर्मा आप कब आ रही हैं? प्रियल बोली, एक बार तो मैं नहीं आ पाऊंगी लेकिन यहाँ से निक की हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगी। निक ने कहा, तो तुमने भी मेरी बात मान ही ली। मैंने इस मिशन में इन्वॉल्व होने के लिए इसीलिए हाँ भरी थी ताकि प्रियल इन सब से दूर रह सके। मिस्टर मुखर्जी, इस बार आप सोचेंगे भी नहीं कि प्रियल किसी जन्नत बाजार या उस जैसी किसी और जगह पर जाएगी भी। चलिए ठीक है, आप दोनों यहाँ से हमारी हेल्प करेंगे, वही हमारे लिए काफी होगा। मैं आपको सारी डिटेल्स मेल कर दूंगा। मिस्टर मुखर्जी मीटिंग करके वहां से जा चुके थे। निक लैपटॉप में प्रियल के साथ में उनकी भेजी हुई कुछ डिटेल्स देख रहा था और दोनों इस बारे में डिस्कशन कर रहे थे। निक ने कहा, गुड़िया तुमने एक बात नोटिस की कि ज्यादातर लड़कियां घूम फिर के वापस इन्हीं एरियाज में आ जाती हैं, ऐसा क्यों है, कुछ आइडिया है तुम्हारा? प्रियल खोए हुए स्वर ने बोली, हाँ नहीं क्या कहा आपने? निक ने कहा, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम्हारा क्या हुआ, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? मिस्टर मुखर्जी के सामने भी बिल्कुल गुमसुम सी बैठी थी और अभी कितनी देर से सिर्फ मैं ही बोले जा रहा हूँ, तबीयत तो ठीक है ना? प्रियल ने रुआंसी होकर कहा, पता नहीं। निक ने कहा, वैसे बच्चे इसमें रोने जैसी शक्लें बनाने जैसा कुछ नहीं है, मैं चेकअप करूं या किसी और डॉक्टर के पास चलते हैं? प्रियल बोली, आप अपना काम देख लीजिए, मैं डॉक्टर के पास हो आऊंगी और आते टाइम दोनों बच्चों को भी ले आऊंगी। निक ने कहा, अब तुम इसे मेरा ओवर पोजेसिव होना समझो या कुछ और, लेकिन मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकता। लास्ट टाइम हम लोगों को जिसने कोल्ड स्टोरेज में बंद किया था वो हम दोनों को ही जानता होगा और जरूर इसी मौके की तलाश में होगा कि कब हम दोनों में से किसी एक को पकड़कर दूसरे को कमजोर किया जाए। सो वी हैव टू बी केयरफुल। आप कब तक ऐसे ही डरते रहेंगे? आपकी वजह से नील और निखिल की पेरेंट टीचर मीटिंग भी अर्जुन और सिमट इन करने जाते हैं। आरोही को बच्चों को स्कूल छोड़ने और लेने जाना पड़ता है, निक ने कहा, ताकि किसी को ये पता ना चले कि वो दोनों हमारे बच्चे हैं। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? निक ने कहा, जब तक हम वापस यूएसए नहीं चले जाते। बाकी तुम्हारी ही जिद थी ना कि मैं इस मिशन को हैंडल करूं, तो लो सब कुछ तुम्हारे हिसाब से हो रहा है, लेकिन सारे रूटीन गाइडलाइंस तुम मेरे हिसाब से फॉलो करनी होंगी। चलो अब डॉक्टर के पास चलते हैं। निक की बात सुनकर प्रियल गुस्सा हो गई, वो वहां से उठकर जाने लगी। मुझे कहीं नहीं जाना, आप हो ना डॉक्टर तो खुद ही चेकअप करके मेडिसिंस दे दीजिए। प्रियल गुस्से में वहां से चली गई, जबकि निक को उसका बिहेवियर बहुत अजीब लगा। निक ने कहा,
इसे क्या हो गया, कभी तो इतना ज्यादा गुस्सा करती है तो कभी रोने लगती है। इतने मूड स्विंग्स तो प्रेगनेंसी में भी नहीं होते। एक मिनट, कहीं ये प्रेग्नेंट? लेकिन नहीं यार, ऐसा कैसे हो सकता है, इसने तो सर्जरी करवाई थी ना, फिर ये प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। लेकिन इसकी कंडीशन, सिम्टम्स तो सारी एक ही बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि गुड़िया शायद प्रेग्नेंट हो, पर नहीं हो सकती। निक प्रियल को लेकर उलझन में खोया हुआ था, तो उधर प्रियल भी परेशान होकर इधर से उधर चक्कर लगा रही थी। मुझे क्या हो रहा है, इतनी वीकनेस और इतने ज्यादा मूड स्विंग्स? ऐसा तो तभी हुआ था जब नील और निखिल पैदा होने वाले थे। कहीं मैं प्रेग्नेंट? कम ऑन यार प्रियल, पागल हो गई है क्या? सर्जरी के बाद तो ये कम्प्लीटली इम्पॉसिबल है, फिर मेरी तबीयत इतनी खराब क्यों होती जा रही है? एक बार टेस्ट कर लूँ क्या? लेकिन रिजल्ट तो मुझे पता ही है ना, फिर भी टेस्ट करने में क्या जाता है यार, लेकिन मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ यार? प्रियल अपनी उलझन दूर करने के लिए अपने फ़ोन में कुछ सर्च करने लगी, तो वहीं निक प्रियल की बदलती हेल्थ कंडीशंस को समझ नहीं पा रहा था। जहां दोनों को कहीं ना कहीं ये शक था कि प्रियल प्रेग्नेंट हो सकती थी, तो दूसरा सच ये था कि प्रियल सर्जरी के बाद माँ नहीं बन सकती थी।